ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 10 और श्लोक क्रमांक 9। मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। आप बोलेंगे मेरी बात? मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अनुवाद। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार में, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझमें ही निवास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते और मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है, वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से नहीं हटते। वे दिव्य विषयों की चर्चा करते रहते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त जो हैं, वो परमेश्वर के गुणों की और लीलाओं के विषय में अहर्निश यानी दिन रात वर्णन करने में लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्माएं निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद का अनुभव करते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदांतिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अर्जुन भगवान को भगवद गीता में पूछते हैं कि आपका शुद्ध भक्त कौन है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। तो भगवान ने कई जगह पर उसका उत्तर दिया है। तो एक जगह पर उत्तर दिया है कि सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः, कि वो हमेशा मेरे गुणगान करते रहते हैं। जब भी उनसे मिलेंगे मेरी बातें करते रहते हैं। दुनियादारी की बातें नहीं करते हैं, पैसे की बात नहीं करते हैं, भोग की बात नहीं करते हैं, यहाँ वहाँ का प्रजल्प यानी गॉसिप नहीं करते हैं। जब भी उनको मिलेंगे आप, अगर आपको देखना है कौन भक्त है, तो हमेशा भगवान के विषय में बात करते रहते हैं, या भगवान की सेवा के विषय में बात करते हैं, या भगवान के धाम के विषय में बात करते हैं, भगवान के दर्शन के बारे में बात करते हैं, या भगवान के रूप के बारे में बात करते हैं, या भगवान के भक्तों का गुणगान करते रहते हैं, उनके संग के बारे में विचार करते रहते हैं, भगवान के संग में सत्संग में क्या सुना उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। यहाँ पर भी वो कहते हैं कि मेरे भक्त जो हैं, ये बात श्रीमद् भागवत में भी आती है। जब अम्बरीश महाराज का अपराध दुर्वासा मुनि ने किया और दुर्वासा मुनि भाग रहे थे चक्र से बचने के लिए, तो ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, उसके बाद विष्णु के पास गए, बचाओ मुझे बचाओ। तो उस समय विष्णु भगवान ने भी दुर्वासा मुनि को बहुत अच्छा बोध दिया है। वो कहते हैं कि मेरे भक्त जो हैं वो मेरे हृदय में रहते हैं और मेरे भक्तों के हृदय में मेरे सिवा और कुछ नहीं होता है। मेरे हृदय में मेरे भक्तों के सिवा और कुछ नहीं होता है और मेरे भक्तों के हृदय में मेरे सिवा और कुछ नहीं होता है। मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ, वो मेरे हृदय में निवास करते हैं और इसके अलावा हम दोनों को और कुछ पता नहीं है। ऐसे भगवान ने अपने भक्तों का गौरव किया है। तो इसमें उनका जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहता है। कितनी सुंदर बात बताई गई। हमारे जो इंद्रिय हैं जो भगवान ने हमको दिए हैं, वो हमको कई विषयों की ओर खींचते रहते हैं, कई विषय हमको आकर्षित करते रहते हैं। कभी मन हमारा एक जगह स्थिर नहीं रहता है, क्योंकि इतने विषय भगवान ने यहाँ बना के रखे हैं, वो सब विषयों के प्रति हमारा मन बहुत आकर्षित रहता है, चंचल रहता है, दोलायमान रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को भगवान के इंद्रियों की संतुष्टि करने में लगाता है, वही इस जीवन के बंधन से बाहर हो सकता है। नहीं तो जो विषयों को प्रतिसाद देता है, विषयों के लिए रिस्पॉन्स देता है, वो दोबारा आता है उन विषयों को संपर्क करने के लिए। जहाँ उसका मन लगा रहता है उसी जगह दोबारा आता है। हमने देखा है ना जानवर कैसे होते हैं, एक जगह भोजन मिला, आज मिला तो कल दोबारा वहीं आ जाते हैं। हमारी इंद्रियां वैसी हैं, हमको एक जगह भोग मिला तो हम वापस वहीं आ जाते हैं। मर भी गए तो फिर दूसरा शरीर धारण करके वापस वहाँ लौट के आते हैं। लेकिन भक्त लोग ये सत्य को जानते हैं और ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा, जानते हैं कि जब मेरे इंद्रियों के जो स्वामी हैं ऋषिकेश, उनकी सेवा में लग जाते हैं, उनको संतुष्ट करने में, जब मेरे इंद्रियों का संपर्क उनके इंद्रियों के संतुष्टि में हो जाता है, जब मैं उनसे बंधा रहता हूँ सेवा के माध्यम से, तो वो व्यक्ति इस जीवन के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमें देखना है कि हमें लगातार भगवान की सेवा में लगा रहना है। रूपा जी हमारे कहते थे कि हमको दिन भर जप करना चाहिए, ऑल द टाइम वी शुड चैंट, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा मन भटकता है, हमारा इतना अभ्यास नहीं है, हमारा इतना प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए वो कहते थे आप 16 माला जप करो और दिन भर सेवा में लगे रहो, अपने आप को खाली मत रखो, क्योंकि जैसे हम खाली हो जाते हैं, समझो आपके ग्लास में समझो आधा ग्लास दूध है, तो आधा ग्लास में क्या होता है, हवा होती है। अगर आप वो दूध पी जाते हो तो पूरे ग्लास में क्या होता है, हवा आ जाती है, वो खाली नहीं रहता है। वैसे ही हमारी इंद्रियां जब विषयों से मतलब भगवान के सेवा से मुक्त हो जाते हैं तो तुरंत माया वहाँ पर आके बैठ जाती है, या कोई वैक्यूम नहीं है क्या कहते हैं उसको, पोकड़ी, अवकाश नहीं है वहाँ पर, हमेशा वहाँ पर या तो कृष्ण है या तो माया है। तुमको देखना है कि हमेशा हमारे इंद्रियों के और हमारे मन में और आत्मा में कृष्ण बसे रहें, तो ये भक्तों का लक्षण है। अभी आप कैंप में भी जाएंगे तो वहाँ पर भी हमको या तो हमारे सेवा के बारे में बात करनी चाहिए या तो भगवान के बारे में बात करनी चाहिए। हमारा जो केंद्र है विचारों का वो भगवान होना चाहिए, उसी के आसपास हमारा जो चिंतन है वो घूमना चाहिए। तो कथयंतश्च माम नित्यम, नित्य मेरे बारे में चर्चा करते हैं वो, नित्य, कोई ऐसा समय नहीं जिसमें वो और कोई बात करते हैं, उनका और कोई बात भी जो है, जैसे सनातन गोस्वामी हमारे थे वो ब्रज में रहे और ब्रजवासी ने उनको इतना प्रेम किया, उनके ऊपर अपना गुरु मानते थे उनको, तो जाकर बात करते थे आपका शादी बेटी का हुआ क्या, आपके खेत में फसल कैसे आई, तो आपको लगेगा कि सनातन महाराज गोस्वामी महाराज तो अभी दुनियादारी की बातें कर रहे हैं। नहीं, दुनियादारी की बातें भी किसके विषय में कर रहे हैं, भक्तों के विषय में कर रहे हैं, भक्तों के जीवन के बारे में कर रहे हैं। जब कोई भक्त होता है तो उसकी गृहस्थी भी भक्ति है, जब कोई भक्त होता है उसको नौकरी करता है कुछ धन कमाता है वो भी उसकी भक्ति है, क्योंकि उसका सारा धन सारी शक्ति सारी जो बुद्धि है वो भगवान की सेवा में ही चलती रहती है। वो ग्रस्त होने पर भी उसके बच्चे पैदा होते हैं, उसके पत्नी है, उसका घर है, उसके बाद पैसा है, लेकिन वो सारे चीज़ों को बड़ी कुशलता से भगवान की सेवा में लगाता है। अगर भक्त के खेत में अच्छी फसल हुई तो वो उसका पैसा जो वो कमाएगा उसे दारू नहीं पिएगा, वो खेती का पैसा बेचेगा और पैसा आएगा तो भक्तों को घर में सत्संग के लिए बुलाएगा, घर में महोत्सव कराएगा, जन्माष्टमी और राधाष्टमी का उत्सव मनाएगा। तो इसलिए ऐसे भक्तों के विषय में अगर क्षेम कुशल की चर्चा करते हैं कि भाई आपका बच्चे का जन्म कैसा हुआ, ठीक हुआ ना, बच्चा कैसा है, ओके है, आपकी बीवी बीमार थी वो कैसी है अभी, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं बीच में बीमार हो गए थे सब ठीक हो गया, ये बातें प्रजल्प नहीं है, बातें गॉसिप नहीं है, क्योंकि वो भक्तों के विषय में। अगर दुर्योधन के विषय में आप चर्चा करेंगे उसके बच्चे कैसे हैं तो फिर गड़बड़ है तो इसलिए सनातन गोस्वामी भी ब्रजवासियों के बीच में रहकर ये चर्चा करते थे, उनका क्षेम कुशल पूछते थे, क्योंकि वे ब्रजवासी थे, भगवान के भक्त हैं, जिनका जीवन भगवान के चरणों में समर्पित है, उनके क्षेम कुशल के बारे में चर्चा करना कोई प्रजल्प नहीं है। और विशेष बात यह है कि हम भगवान के विषय में चर्चा कर सकते हैं लेकिन उसमें आनंद पाना एक दूसरी स्थिति है। प्रभुपाद जी भी कहते थे चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, बहुत लोग चैंट हरे कृष्णा करते हैं लेकिन हैप्पी नहीं रहते एक चैलेंज है जीवन का। कृष्ण भगवान कहते हैं सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये जो मेरा भक्ति मार्ग है वो आनंद से भरा हुआ है, केवल सुख नहीं है सुसुख है, परम सुख है उसके अंदर, साधारण सुख नहीं है, दिव्य सुख है उसके अंदर। तो हम लोग भाई रोते रोते कंप्लेंट करते करते सेवा कर सकते, भाई कितना काम है, ये ऐसा है वैसा, प्रभु जी नहीं हो रहा है, वो ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ये सुविधा नहीं है, वो नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, सारी सेवाएं करते रहते। लेकिन अगर हमारा भाव संतुष्टि का नहीं है, अगर हमारा भाव समाधान का नहीं है, कृतज्ञता का नहीं है, ग्रेटफुल ग्रैटिट्यूड का नहीं है, तो हमारी सेवा जो है ना वो कहीं और पहुंच सकती है। जैसे हम कल रात को चर्चा कर रहे थे, अगर हमने भगवान की सेवा में बहुत बढ़िया खीर बनाई और उसको ऑफर करने के पहले नमक डाल दिया उसके अंदर, इतना मेहनत की हमारे, इतना घोटा उसको, उतना झाड़ा कर दिया उसको, इतना मेवा डाला उसके अंदर, क्या क्या चलाया उसके अंदर, और लास्ट में उसमें नमक डाल दिया, तो उसको हम भोग लगा सकते हैं क्या? क्या आप खा सकते हो उसको? भगवान को नहीं, चलो आप खा सकते हो, नहीं खा सकते हो। तो खीर भी भगवान को अर्पण करना है तो उसमें नमक जैसी जो अप्राकृतिक चीज़ है, जो विरुद्ध भास वाली चीज़ है, उसको नहीं डालना चाहिए। उसी प्रकार से हमारी सेवा हम कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो संतुष्टि होना भी जरूरी है, कृतज्ञता होना भी जरूरी है। सेवा को जो बोझ के रूप में नहीं करना चाहिए, उसमें आनंद प्राप्त होना चाहिए, सुख प्राप्त होना चाहिए। इसलिए क्या कहा है, तुष्यन्ति च रमन्ति च। भक्त जो है भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो संतुष्टि का अनुभव करते हैं, फुलफिलमेंट परिपूर्णता का अनुभव करते हैं, और आनंद भी प्राप्त करते हैं, समाधान का अनुभव करते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। तो हमें भी हमारी सेवा में वो कष्टमय भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान किसी को कष्ट देना नहीं चाहते। हाँ, दिल है आपका, करो सेवा, मतलब मत करो, भगवान को हमारी सेवा की जरूरत नहीं, हमें उनकी सेवा की जरूरत है, हमें उनके भक्तों की सेवा की जरूरत है। और अगर हमको उनके लिए उनको आनंद वाली सेवा अगर प्रदान करना है तो हमें भी उसको आनंद आना चाहिए। वी शुड फील ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि हमको मौका मिल रहा है। कोई भी सेवा वो बोझ के भाव में नहीं करना चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए। और वो कैसे होता है, हमारे गुरुदेव बताते हैं, संत लोग बताते हैं कि सेवा हमारी बर्डन कब हो जाती है, बोझ कब बन जाती है, जब हमारा भजन ठीक नहीं होता है। जब भजन हमारा अच्छा होता है तो हमारी सेवा बहुत बढ़िया होती है, हमें सेवा से आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है, सेवा हमें एजिटेट नहीं करती है। लेकिन सेवा हमको जब उद्विग्न करती है उसका मतलब हमारा भजन ठीक नहीं है, तो हमारी चेतना जो है वो अस्थिर हो जाती है, उद्विग्न हो जाती है, उद्वेग प्राप्त होता है उससे। तो ये जो तुष्यन्ति च रमन्ति जो है ना, ये बहुत विचार करने लायक है। हमको भगवान के भजन में, भगवान के भक्तों की सेवा में, भगवान के भक्तों के संग में संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए, आनंद प्राप्त होना चाहिए। और उसमें जब आनंद प्राप्त होता है तो भगवान को फिर वो मीठा लगता है, फिर वो उसमें बिना नमक के खीर भगवान को ऑफर की, नैवेद्य किया तो भगवान ने उसको चख लिया। लेकिन जब हम उद्विग्न हो जाते हैं तो उसमें नमक पड़ जाता है, तो वो बनाई आपने बहुत मेहनत करके लेकिन वो अभी ऑफर करने के लायक नहीं है। इसीलिए ये सेवा का माध्यम जो है, एक तो बहुत आसान है देखने के लिए, लेकिन अगर हमारी चेतना अगर उद्विग्न है, अस्थिर है, एजिटेटेड है, तो फिर वो सेवा करने के बाद भी वो नैवेद्य करने योग्य नहीं होती, उसको भगवान के चरणों में चढ़ाने के योग्य नहीं होती। तो हम सब लोग प्रयास करेंगे हमारे बरसाना आई कैंप में कि जो भी हमारा काम है वो हम हृदय से आनंद से करेंगे। जब हमने श्री गिरिराज को गोवर्धन से प्राप्त किया था और मीरा रोड हरी बाड़ा में उसको स्थापन किया था, तो उस ब्रिजवासी ने कहा था कि भगवान की सेवा करते समय एक एक्स्ट्रा हार्ट बीट आनी नहीं चाहिए। बहुत सुंदर बात कही थी, देर शुड नॉट बी एन एक्स्ट्रा हार्ट बीट ऑफ एंग्जाइटी एंगर एंड वरी। भगवान के लिए आप मन से सेवा करो, जबरदस्ती परेशान होकर बोझ बनाकर मत करो। भगवान को हमारी सेवा की जरूरत नहीं है, हमें उनकी सेवा की जरूरत है। तो एक भी हमारे हार्ट बीट एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, ना हमारे लिए ना किसी और को वो देना चाहिए। हम संतुष्ट हैं लेकिन किसी और के हार्ट बीट बढ़ा रहे हैं। तो ये सेवा हमारा एक टीका है, वैक्सीन कहते हैं ना, वैक्सीन। जब तक हमारे अंदर वैक्सीन है तब तक हमारे पर रोग नहीं होता है। आप रोग के एरिया में घूमो, आपको रोग नहीं होगा जब तक आपके शरीर में वो वैक्सीन घूम रहा है। तो ये सेवा जो है वो हमारा माया के प्रभाव से बचने के लिए एक वैक्सीन है। जब तक सेवा चल रही है माया का रोग हमको नहीं हो सकता है, भव रोग नहीं हो सकता है, भव रोग से मुक्त रहते हैं हम। जैसे हमारी सेवा से हम फारग हो गए, मतलब अलग हो गए, या उसमें विराम आ गया, बीच में गैप आ गया, तो तुरंत माया का रोग हमारे ऊपर प्रवेश करता है। तो सेवा हमारा वैक्सीन है जीवन भर के लिए, ऐसे नहीं कि कुछ समय के लिए बरसाने में है तब तक सेवा करना है, निरंतर सेवा में रहेंगे तो अंत में उस रोग के मुक्त होने के कारण और भगवान के भजन करने के कारण भगवान की याद हमको आएगी, फिर हम भगवत धाम जाने में योग्य हो जाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।